आयु को अपनी मौत के आखिरी लम्हे याद आ चुके थे और अब उसने इस बारे में आरफ को भी बता दिया था। आयु आरफ का पूरा साथ देना चाहती थी ताकि वो माहिरा से बदला ले। इस वक्त आरव और आयु ऊपर कमरे में बैठे हुए थे। आयु की तबीयत काफी सुधर गई थी। पूरी बात बताने के बाद आयु को भी राहत महसूस हो रही थी, तो वहीं आरफ को भी खुशी थी कि अब आयु को किसी भी बात का डाउट नहीं रहेगा और ना ही वो उसे रोकेगी। इस बारे में बात करने के बाद आयु नहीं चाहता था कि आयु उस बारे ज्यादा सोचे। उसने आयु के बालों को सही करते हुए कहा, लाओ मैं तुम्हें चेंज करवा देता हूँ और उसके बाद हम डिनर करेंगे। आयु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मैंने तुम सबको परेशान कर दिया ना, खासकर तुम्हें। हाँ, परेशान तो कर दिया, ऊपर से तुम्हारी वजह से मैं आर्या पर भी चिल्ला दिया था। मैं नीचे सबको बोल देता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है और तुम ठीक हो, आरव ने धीरे से कहा। मुझे सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, अचानक आयु बोली। अपने आर्या को फिर से देखना है, पहले मैं उसे तुम्हारी नज़रों से देख रही थी, तुमने बताया वैसे यकीन कर लिया, पर अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, वो मेरा ही बेटा है। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी, फिर उसने उठकर आयु के लिए कपड़े निकाले। आयु चेंज कर रही थी जबकि आरव नीचे पहुंचा। सब आयु के लिए परेशान हो रहे थे, उनमें से किसी ने खाना नहीं खाया था। नीचे आते ही आरव ने सबसे पहले आर्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा अभी तक उतरा हुआ था। आरव आर्या के पास गया और उसका कंधा सहलाकर कहा, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, हाँ पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। इस तरह मुंह भुलाकर तो तुम बचपन में भी नहीं बैठते थे जैसे अब बैठे हो। पर अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं ना डैड, बचपन में गलतियां करता था तब बात अलग थी, लेकिन अब इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैंने गलती की और मॉम का ध्यान नहीं रखा। वो ठीक तो है ना, क्या हुआ था उन्हें, वो क्यों चली गई थी अचानक से? आर्या ने आरव से काफी सारे सवाल पूछ डाले, वो अभी भी आयु को लेकर परेशान हो रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और उन सबकी तरफ देखकर कहा, सुबह आयु ने हमारी बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया कि मौत के वक्त वो प्रेग्नेंट थी और ट्विन्स होने वाले थे, उसी से थोड़ा टूट गई थी और कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। उसने बताया कि उसे होटल साज में जो एक्सीडेंट हुआ था वो सब याद आ गया था, मतलब आखिरी वक्त क्या हुआ था। चलो इतने के औस में कुछ तो अच्छा हुआ, अयान ने जवाब दिया। हाँ ऐसा करते हैं, सब साथ में ऊपर डिनर करते हैं, तुम सबकी शक्ल साफ बता रही है कि अभी तक परेशानी में कुछ नहीं खाया होगा, आरव ने कहा। फिर वो आर्या की तरफ देखकर आगे बोला, तुम्हारी मॉम तुमसे अकेले में मिलना चाहती है, तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही है, कारण तुम्हें भी पता होगा। आर्या ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया, वो एक पल भी वहां नहीं रुका और दौड़कर जल्दी से ऊपर कमरे में गया। आयु तब तक चेंज कर चुकी थी, आर्या को देखते ही वो जल्दी से उसके गले लग गई। आयु सुभगते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आरव को बहुत कहा था कि वो मेरे पीछे ना आए और तुम्हारा ख्याल रखे, पर उसने मेरी नहीं सुनी, वहां बहुत शोर था तो मैं तेज भी नहीं बोल पा रही थी, आई एम रियली सॉरी आर्या, बोलते हुए आयु रोने लगी। आर्या की आंखों में भी आंसू थे, उसने खुद को जल्दी से संभाला और आयु से अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, मुझे किसी बात की नाराजगी नहीं है, बस आप अपना ख्याल रखिए, बहुत मुश्किल से मैंने आप दोनों को फिर से पाया है, प्लीज कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे मैं एक बार फिर से अनाथ हो जाऊं, आई प्रॉमिस, अब से मैं अपना और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, आयु जल्दी से बोली। उनके कुछ देर बात करने के बाद पूरी फैमिली आरव और आयु के रूम में इकट्ठा थी और सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, वहां का मूड काफी लाइट था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। चंडीगढ़ के एक होटल में निर्वाण और आशी ने एक डिनर डेट अरेंज की थी। निर्वाण हॉस्पिटल से वहां आने वाला था जबकि आशी घर से आई थी, इसलिए वो उसका वेट कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। आशी बार बार उसे कॉल कर रही थी लेकिन निर्वाण का कॉल लग नहीं रहा था, तो वो इरिटेट होकर बोली, जब आ ही नहीं सकता था तो फिर टाइम देने का क्या मतलब हुआ, एक महीना होने को आया है शादी को लेकिन उसने ठीक से मेरे साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिताया, ऐसे में क्या खाक हमारी बॉन्डिंग ग्रो होगी, घर वाले तो बोल देते हैं कि टाइम दो, ऐसे टाइम दिया जाता है क्या? आशी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी तो वहीं ऐसा ही कुछ हल उसकी टेबल के जस्ट पास टेबल पर बैठी माहिरा का था, वो भी किसी का इंतजार कर रही थी। माहिरा को अकेले ड्रिंक नहीं करनी थी तो वो आशी की टेबल पर आते हुए बोली, जब तक तुम्हारा और मेरा पार्टनर नहीं आ जाता हम एक दूसरे को कंपनी देते हैं, मेरा इस वक्त अकेले बैठने का बिल्कुल मन नहीं है, मन तो मेरा भी नहीं है पर क्या कर सकते हैं, जिस इंसान से शादी की उसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आशी चिढ़कर बोली। फिर उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और माहिरा से पूछा, आप भी अपने पार्टनर का वेट कर रही हैं क्या? पार्टनर नहीं, अपने मैनेजर का वेट कर रही हूँ, एक लैंड देखी है चंडीगढ़ में, उसी को खरीदना है, माहिरा ने जवाब दिया। मिस्टर ओबेरॉय के पास भी काफी सारी जमीनें थी तो आशी ने क्यूरियोसिटी से पूछ लिया, वैसे मेरे डैड भी यही करते हैं, आई मीन उनके पास काफी सारी जमीन है, आपने कहाँ जमीन देखी है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं डैड से बात करवा दूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। कुछ ही देर में उन दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई थी। माहिरा ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ इस वक्त मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो इस मामले में मेरी हेल्प कर सके, वो चंडीगढ़ के हाईवे के आसपास की जमीन है,
मिस्टर अर्जुन सिंह ओबेरॉय की बेटी के नाम है। मैं उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। सोच रही हूँ कि उनकी बेटी और उनसे एक मीटिंग कर लूँ। इसी सिलसिले में अपने मैनेजर को बुलाया था। माहिरा इस तरह अपने लीगल या इलीगल किसी भी काम की जानकारी किसी को देती नहीं थी, पर इस वक्त उसे सच में मदद की जरूरत थी। पूरी बात सुनकर आशि ने मुस्कुराकर कहा, तब तो आप बिल्कुल सही इंसान के सामने बैठी हैं। आप जिस मिस्टर ओबेरॉय और उनकी बेटी की बात कर रही हैं वो मैं ही हूँ। आशि ने जब अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया तो माहिरा ने हैरानी से कहा, क्या सच में? थैंक गॉड तुमने मेरी काफी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया, वरना एक मीटिंग तक नहीं हो पा रही थी। तुम्हारे डैड कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर उसने आशी के चेहरे की तरफ देखा और कहा, वो जमीन तुम्हारे नाम है तो शादी के बाद तुम्हारे हस्बैंड के पास चली गई होगी ना, क्या वो ये डील करने के लिए तैयार है? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली हम दोनों की शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, आशी ने धीमी आवाज में कहा। न जाने क्यों वो एक अजनबी पर भरोसा करके उसे सब बताने जा रही थी। आशी ने कुछ पल रुक कर कहा, डैड को जैसे उस जमीन से नफरत सी हो गई है, और सच कहूं तो मुझे भी। आप चाहो तो ले सकती हो। आपसे पहले भी एक शख्स आया था जो उस जमीन के चक्कर में मुझसे शादी करना चाहता था, उसी के चक्कर में मेरी शादी किसी और से हो गई। मतलब क्या कहना चाहती हो तो मैं समझी नहीं हूँ। तुम चाहो तो सब बता सकती हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, माहिरा ने अपने हाथ खड़े करके कहा। वैसे भी उसे किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
मेरा कोई दोस्त नहीं है, आज पहली बार किसी ने ये पूछा है तो बता रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ अपने दिल की बात किसी से कहूँ, लेकिन कोई है ही नहीं। एक बिजनेसमैन आया था जो जमीन खरीदना चाहता था, फिर उसे जब वो जमीन और मेरे बारे में पता चला तो उसने शादी का प्रपोजल रखा। मेरे साथ उसी मंडप में मेरी जुड़वा बहन की शादी हो रही थी। हमारी शादी पहले रजिस्टर्ड ऑफिस में हुई थी, लेकिन अचानक डॉक्यूमेंट चेंज हो गए तो उसके हस्बैंड की शादी मेरे साथ हो गई और मेरे होने वाले हस्बैंड की शादी उसके साथ। फैमिली डिवोर्स करने के सपोर्ट में नहीं है तो बस कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ थोड़ी बॉन्डिंग बन जाए। कमाल की बात है ना, आज मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जबकि मेरी बहन और उस शख्स को देखकर लगता है कि सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। वो दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। मुझे जलन नहीं हो रही है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब उसे मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो मेरी फीलिंग्स क्यों हर्ट की। आशी ने पूरी कहानी माहिरा को बता दी थी, जिसे सुनकर माहिरा को भी उसके साथ हमदर्दी थी। उसने आशी का हाथ सहलाकर कहा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, मुझे बताओ वो शख्स कौन है और तुम्हारी बहन भी, मैं देखना चाहती हूँ उसे। और रही बात तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने की, तो तुम चाहो तो उसका बदला हम उससे ले सकते हैं। माहिरा की बात सुनकर अचानक आशी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी अंदाज में कहा, वो मेरी जुड़वा बहन है तो मुझे उससे कोई बदला नहीं लेना है, एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में खुश है, यही काफ़ी है। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। मैंने पहले किसी लड़के को डेट नहीं किया था, लेकिन जब उसने बिना देखे मुझसे शादी की बात की तो सब उसके खिलाफ हो गए थे। साफ पता चल रहा था कि वो उस जमीन के लिए शादी कर रहा है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उससे दिल लगा बैठी। सब कुछ बताते हुए आशी ने अपने मोबाइल में आरव और आयु की तस्वीर दिखाई, जिन्हें देखकर माहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। आशी आगे भी बोली जा रही थी, लेकिन माहिरा को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। गुस्से में टेबल के नीचे उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं और आंखों में पानी आने लगा था। लो जी, हो गया सियापा, माहिरा को आरव और आयु के बारे में पता चल गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।